हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर ने रिया से कहा था, मैंने इस घर का 50% मालिकाना हक आपको और आपके बच्चों को दे दिया है, और डोंट वरी, मैंने अकरम भाई को कुछ नहीं दिया है, तो पूरी तरह से इस घर की मालकिन आप हैं। अबीर की बातें सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जिस घर में वो अब तक गजाला की बात सुनकर खुद को बहुत ही नीचे समझने लगी थी, आज वो घर उसे अपना लगने लगा था। अबीर ने उसे अपनेपन का एहसास करवा दिया था। खुशी के मारे रिया की आंखें भर आई थीं। वो अबीर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द खुशी के मारे उसके अंदर ही दब कर रह गए थे। तब अकरम ने अबीर से कहा था, लेकिन अबीर भाई, आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और रही बात आपकी सौतेनी माँ की, तो उनका बर्ताव कैसा है ये मैं पहले ही रिया को बता चुका था। तब अबीर ने अकरम से कहा था, जोया का इस दुनिया में आप दोनों के अलावा कोई नहीं है, और मेरा जोया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हम लोग एक परिवार हैं, और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आप लोग मामा मामी बन चुके हैं। रिया और अकरम ने ये सुनते ही खुशी के मारे उछलने लगे थे। तभी रिया चिंता भरे स्वर में बोली थी, लेकिन अबीर भाई, इतनी जल्दी कैसे, ये सब कुछ कैसे हो गया, वो तो अभी जोया का टाइम भी पूरा नहीं हुआ था। तब अबीर ने उन्हें पूरी बात समझा दी थी और बताया था कि जोया बच्चा रखने के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए इमरजेंसी में उसकी डिलीवरी करनी पड़ी थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसका नाम हमने अरीबा सिंह राठौड़ रखा है। अकरम और रिया दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तब रिया चहक कर बोली थी, मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? तब अबीर ने कहा था, ठीक 4 महीने बाद मैं आपको खुद वहाँ ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक और घर तैयार करवाया है जहाँ पर आप रहेंगे। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक आप भी वहाँ रहोगे, और अकरम भाई, आप दोनों हमारी बेटी अरीबा का ध्यान रखोगे, क्योंकि जोया आप लोगों के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि ठीक 4 महीने के बाद जोया को अपने मिशन पर जाना है। जैसे ही अबीर ने ये बोला, अकरम मुस्कुराहट के साथ अबीर की ओर देखने लगा था, जबकि रिया हैरान हो गई थी और बोली थी, मिशन? कैसा मिशन? तब अबीर ने उसे कहा था, वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मेरा वापस लौटना जरूरी है, तब तक आप लोग आराम करें। लेकिन इससे पहले कि अबीर घर से निकल पाता, जोरों से आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो गई थी। मौसम बिल्कुल खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो आज की रात वापस जोया के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि पूरे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। मौसम और भारी बारिश की वजह से कोई भी हवाई यात्रा या किसी भी तरह का प्राइवेट जेट विमान नहीं जा सकता था, इसीलिए मजबूरन अबीर को आज की रात वहीं रुकना पड़ा था। उसने फ़ोन करके जोया को ये जानकारी दे दी थी। जैसे ही जोया ने ये सुना कि आज की रात अबीर नहीं आएगा, वो रोने लगी थी। अबीर ने उसे आगे कहा था, अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना है, साथ ही साथ अरीबा का भी ध्यान रखना होगा। अबीर की बात सुनकर जोया का मन पूरी तरह से उदास हो गया था, क्योंकि उसे आदत ही नहीं थी अबीर के बिना सोने की। उसे अबीर की पूरी तरह से आदत हो चुकी थी। वो दिल से अबीर को अपना मानने लगी थी, और इस तरह से अबीर का आज रात उससे दूर रहना उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो रह रहकर अबीर सिंह राठौड़ की याद कर रही थी। वेल, ऑलमोस्ट रात हो ही चुकी थी। जोया जैसे ही बेड पर गई, उसे खालीपन का एहसास होने लगा था, क्योंकि जब तक वो अबीर के ऊपर नहीं लेट जाती थी और अबीर के हाथ उसके बालों में नहीं चलते थे, उसे नींद नहीं आती थी। अबीर के पास होने से उसे अलग ही सुकून मिलता था। जोया कितनी ही देर तक सोने की कोशिश करती रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अबीर भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोया के बिना उसे भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों की हालत एक जैसी हो रही थी। अबीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। इतने तूफान और बारिश में वो जोया के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि जोया अच्छी खासी दूरी पर थी, और किस जगह पर थी ये बात उसने सीक्रेट रखी थी। वो किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने देना चाहता था, लेकिन आज वो नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से उन दोनों की ही हालत बहुत बुरी हो रही थी। दोनों को पल पल एक दूसरे की याद सता रही थी। अबीर भी पूरी रात नहीं सोया था और पूरी रात मौसम खुलने का इंतजार करने लगा था। अबीर सोच रहा था कि जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी, वो अपने प्राइवेट जेट के द्वारा जोया के पास पहुंच जाएगा, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर शायद मौसम को उन दोनों की हालत पर तरस आ गया था। धीरे धीरे बारिश हल्की होने लगी थी, और करीब 4 बजे सुबह में बारिश रुक गई थी। क्योंकि अबीर पूरी रात नहीं सोया था तो इस वक्त उसने जेट रेडी करवा दिया था और जोया से मिलने के लिए रवाना हो चुका था। अकरम और रिया के लिए उसने एक नोट छोड़ दिया था, क्योंकि वे दोनों उस वक्त सो रहे थे तो उसने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा था और वो वहाँ से निकल गया था। वहीं अरहम ठाकुर ने सोच लिया था कि अगर अबीर सिंह राठौड़ यहाँ आया है तो वो वापस भी जरूर जाएगा और वो उसका पीछा करके जोया का पता लगा लेगा। इसी चक्कर में वो पूरी रात अबीर के बंगले के सामने बैठा हुआ था। वो इस जगह छुपा हुआ था कि कोई उसे देख ना पाए। वो सोच रहा था कि गजाला को घर से निकलने के बाद अबीर ज्यादा देर नहीं रुकेगा और वो जोया के पास जरूर वापस जाएगा, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो नहीं जा पाया था। लेकिन इस बात को अरहम को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। अरहम को तो लगा था कि अबीर अपनी कार ड्राइव करके ही जाएगा, जोया को उसने कहीं आसपास ही रखा हुआ होगा, वरना वो इतनी जल्दी कैसे आ जाता। लेकिन अरहम को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि अबीर सिंह राठौड़ अपने प्राइवेट जेट के द्वारा जोया के पास जाएगा और वो उसी से वहाँ आया भी था। सो अरहम पूरी रात बारिश में भीगता हुआ बाहर बैठा रहा था, केवल इसी इंतजार में कि अबीर आए और वो उसका पीछा करे। लेकिन 2 से 3 बजे के बाद जैसे ही बारिश बंद हुई, अरहम को नींद आने लगी थी। कोई भी इंसान पूरी रात नहीं जाग सकता था और 3 से 4 बजे का टाइम तो ऐसा टाइम होता था कि उसे नींद आनी ही होती है। लेकिन अबीर की आंखों भी नींद नहीं थी, क्योंकि वो जोया के बिना सो ही नहीं पा रहा था। इसीलिए अबीर ने अपने बंगले की छत से ही अपने प्राइवेट जेट की उड़ान भर ली थी और अरहम उसके इतने करीब पाकर भी उसे नहीं पकड़ पाया था और जल्दी ही अपने प्राइवेट जेट के द्वारा हॉस्पिटल की छत पर लैंडिंग कर चुका था। वहीं जोया भी करवट बदल रही थी, उसे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी और वो गुस्से में उठ बैठी थी। तभी अबीर ने दरवाजे पर जाकर उसे देखते हुए कहा था, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? जैसे ही जोया ने अबीर की आवाज सुनी, वो जल्दी से पीछे मुड़ी थी। उसने देखा कि अबीर पीछे खड़ा हुआ है। जोया अचानक से उठी और दौड़ते हुए उसके गले लग गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो अब अबीर के बिना नहीं रह सकती है। अबीर सिंह राठौड़ ने उसे अपना बना ही लिया था।
जोया ने 2-3 घूंसे उसकी चेस्ट पर मारते हुए उसे शिकायत भरे लहजे में कहा था, आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, तो क्या जरूरत थी आपको जाने की? अरे मैं पूछती हूँ, आप वहाँ पर गए ही क्यों? जब मौसम वहाँ पर खराब हो चुका था, बारिश का मौसम पहले से ही हो रहा था, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है, आपकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, मेरी आंखें एकदम मोटी मोटी हो गई हैं। अबीर जोया की शिकायत सुनकर मुस्कुराने लगा था और बोला था, क्या सच में मेरे बच्चे को नींद नहीं आई? अबीर ने बड़े ही प्यार से कहा था। अबीर की बात सुनकर जोया ने ना में 2 बार गर्दन हिला दी थी। जल्दी ही अबीर ने जोया को गोद में उठा लिया था और उसे अपने पास लेटाकर उसके बाल सहलाने लगा था। और अबीर ने जैसे ही कुछ ही मिनटों में जोया की तरफ देखा तो वो एक बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अबीर ने जोया को देखा और वो मुस्कुराने लगा था और जल्दी ही अबीर भी जोया को बाहों में भरकर सो चुका था। वहीं दूसरी ओर अरहम ठाकुर, जो अबीर सिंह राठौर के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, बारिश में भीगने की वजह से और पूरी रात वहां बैठने की वजह से ठंड में कांपने लगा था और उसे बहुत तेज बुखार हो गया था और वो वहीं पर छुपा बेहोश हो चुका था। तब अबीर सिंह राठौर के एक गार्ड ने अरहम को बेहोश देखा था। उसने आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, क्योंकि वो गार्ड जानता था कि उसका कुछ न कुछ कनेक्शन अबीर सिंह राठौर से है, क्योंकि वो उनके घर में रहा करता था। उसने 1-2 बार उसे सलाम भी किया था, इसीलिए उसने उसे एडमिट करवा दिया था और उसकी जानकारी उसकी माँ यानी गजाला जी को दे दी थी। अरहम के अस्पताल में एडमिट होने की खबर सुनकर गजाला जी आनन-फानन में हॉस्पिटल की ओर भागी थीं और जल्दी ही वो अरहम के पास पहुंच गई थीं। अरहम को अभी होश नहीं आया था, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार हुआ था और बुखार में वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, जोया, जोया। गजाला जी ने पहली बार ये नाम सुना था और वो हैरानी से अरहम की ओर देखने लगी थीं और वो सोचने लगी थीं कि ये जोया कौन है और बार बार ये बेहोशी की हालत में जोया का नाम क्यों ले रहा है।